सत स्वरूप को अंतर जाप, सत सिखिया को मन में थाप, नित ही निर्मल ज्ञान विचार, प्रभु दाते के चरण पधार। ये चार चीजें धारण करने को ये वाणी कह रही है। पहली बात, सत स्वरूप को अंतर जाप। जो भी ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है उसका अंतर्गत जाप किया जाए या ध्यान किया जाए। तो हम सब जानते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, अर्थात किसी के मन में ये बात नहीं आती एक जगह ईश्वर है और दूसरी जगह वो नहीं है। सारा जगत, सारा ब्रह्मांड उस ईश्वरीय सत्ता से व्याप्त है, वो हर जगह विद्यमान है, इसीलिए वो सब कुछ जानता है और हमेशा हमारी केयर करता है। केयर का मतलब हमारा शरीर जीवित है या हम जीवित हैं तो उसके कारण हम जीवित हैं। तो सारे संसार की क्रिया उसके अधीन ही है, उससे हटकर कोई क्रिया नहीं। कहते हैं कि सत स्वरूप को अंतर जाप, ऐसा सत स्वरूप जो सर्वव्यापक है, विचार करके देखो क्या उसका कोई स्वरूप हो सकता है। क्योंकि बुद्धि जब सोचती है, बुद्धि जब निर्णय करती है, बुद्धि जब विचार करती है तो नाम रूप गुण कर्म के अंतर्गत वो विचार करती है। किसी वस्तु का नाम याद आएगा या उसका रूप याद आएगा या उसका कर्म याद आएगा या उसका गुण याद आएगा, जिसको कहते हैं बुद्धि का कंसेप्ट। तो बुद्धि अपने अंदर एक कंसेप्ट तैयार करती है, जैसे हम आकार कहते हैं, आकार एक कंसेप्ट है। किसी का नाम ले ले हम, जैसे अग्नि का नाम ले लिया हमने, तो अग्नि का नाम लेते ही आपको उसका नाम रूप गुण कर्म ये चारों चीज एक साथ याद आ जाएगी। अग्नि जलती है तो कैसी लगती है, वो जलती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, गर्मी गर्मी लगती है, और जिसको जलाती है उसको राख कर देती है। सारा का नाम रूप गुण कर्म आपको एक साथ ही याद आ जाएगा, इसी को बुद्धि का कंसेप्ट कहते हैं, या यूं कह लिए बुद्धि का संकल्प कहते हैं। तो बुद्धि जब किसी चीज को याद करना चाहती है तो एक आधार तैयार करती है या कंसेप्ट तैयार करती है, उसके आधार पर ही वो सोचती है, निर्णय करती है। यहां कह रहे हैं कि सत स्वरूप को अंतर जाप, ईश्वर का जो स्वरूप है वो स्थाई है, हमेशा ही एक जैसा है, उसमें परिवर्तन संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। जब सब जगह है तो उसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है। परिवर्तन होता है हमेशा एक सीमा में आधारित वस्तु का। कोई भी चीज है, कोई भी देश भी मान लिया है, देश भी बदलता रहता है, उसकी भूमि भी बदलती रहती है, उसके लोग भी बदलते रहते हैं, हर जगह हर वक्त परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन सत स्वरूप जो है, सत कहते ही उसके है जो हमेशा एक जैसा रहता है। तो अब बताइए, ऐसा ईश्वर का सर्वव्यापक रूप जिसमें कभी परिवर्तन संभव ही नहीं है, उसको मैंने अंदर जाप करना है। तो कैसे जाप करोगे उसका, कैसे अपने अंदर प्रेम पैदा करोगे? तो इसीलिए जो वाणी हमको कहना चाह रही है उस पर यदि हमने विचार नहीं किया, जितने सत्संग सुनते हैं या जितने हम स्वाध्याय करते हैं शास्त्रों का, चाहे महाराज जी की बातें पढ़ें या किसी अन्य सतपुरुष की बातें पढ़ें, चाहे गीता पढ़ें, तो वो ठीक ठीक हमारी समझ में नहीं आता। अब किसी से भी पूजा की बात करो तो सबसे पहले वो पूजा में ईश्वर का आकार खड़ा कर लेगा, कहेगा जिसका आकार है उसको तो मैं याद कर सकता हूं, उससे मैं प्रेम भी कर सकता हूं, जिसका ना आकार हो तो किसको याद करूंगा मैं। तो इसीलिए ये विज्ञान है, अध्यात्म विद्या है, इसको यदि आपने ठीक तरीके से नहीं सीखा तो पूजा तो आप करते रहोगे, लेकिन उसका प्रभाव, उसका जो रिजल्ट या उसका जो फल है जो हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो सतपुरुष कह रहे हैं कि सत्स्वरूप को अंतर जाप, उसका जाप करने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु जानते हैं मेरी याद कैसे करेगा जब मैं सर्वव्यापक हूं, तो वही प्रभु फिर अवतार लेते हैं। किस रूप में? जिसका मैं जाप कर सकता हूं, जिसका बुद्धि संग कर सकती है, जिसका मन संग कर सकता है। तो इसलिए महाजी के बारे में तो हम जानते हैं कि वहां से उनके अंदर महामंत्र प्रकट हो रहा है। तो महामंत्र को कहते हैं कि नाम ब्रह्मेति उपासते, उपनिषद कह रहा है नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करना चाहिए, और ब्रह्म हम जानते हैं कि सर्वव्यापक होता है। तो नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए, जो सर्वव्यापक है तो अंदर कैसे जाप करेंगे? तो इसीलिए वो प्रभु अवतार लेते ही हैं, मेरे लिए लेते हैं, क्योंकि मैं अपने बारे में यही जानता हूं कि जिस समय जो मैं खड़ा हूं या बैठा हूं, जो मैं मुझको अपने को देख रहा हूं, ये मेरा असली स्वरूप है, मैं अपने बारे में ये जानता हूं। जबकि सतपुरुष की बात सुनो या वाणी की बात सुनो, वहां ये कह ही नहीं रहे। वहां तो कह रहे हैं दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार, लेकिन मैं सोचने को तैयार ही नहीं। तो साफ कह रहे ना वाणी, महाजी पे श्रद्धा है, महाजी पे विश्वास है, वाणी पे विश्वास है, लेकिन वाणी कह क्या रही है उस पर यदि मैं मनन ना करूं, उस पर गहरा चिंतन ना करूं, तो बात समझ में नहीं आएगी। तो मेरी बुद्धि उसी आकार में फंसी रहेगी, उसी नाम रूप गुण कर्म में फंसी रहेगी, तो अंदर सही रूप में एक भक्ति नहीं हो पाती है, जिस भक्ति का सीधा प्रभाव मेरी मन बुद्धि पे पड़ता है। उस भक्ति को करने के लिए वाणी के अर्थ को या वाणी के विवेचन को मैंने सीखना ही होता है। तो सत्संग का फायदा यह है कि विभिन्न तरीकों से वो बातें हमारे सामने आती हैं, विभिन्न रूपों में आती हैं, विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से आती हैं, और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। तो यहां वाणी कह रही है सत स्वरूप को अंतर जाप। तो वो सत्स्वरूप हमारे लिए कौन सा है? जो लिमिटेड है, सीमा के अंतर्गत। तो महामंत्र तो लिमिटेड है ना, सीमा के अंतर्गत। उसकी भाषा में समझता हूं, उसके अर्थ को भी मैं समझता हूं, लेकिन दूसरी बात कह रहे हैं कि जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पा। तो लिमिटेड चीज से ही तो आप प्रेम कर सकते हो, लिमिटेड चीज को ही तो जिंदा समझ सकते हो, चेतन समझ सकते हो। तो इसीलिए प्रभु जब मंत्र प्रकट कर रहे हैं तो मैंने उसको प्रभु का स्वरूप समझना है, मेरे लिए प्रभु ने यह स्वरूप धारण किया है। तो बुद्धि के कंसेप्ट के अंदर यह स्वरूप आ सकता है, उसका भाव भी आ सकता है कि हम जानते हैं कि नाद रूप परमेश्वर है, जिसको बाइबल में कहा कि आदि में केवल शब्द था। तो प्रभु वास्तव में नाद रूप परमेश्वर, को शब्द ब्रह्म कहा जाता है, शब्द रूप परमेश्वर कहा जाता है। तो वही शब्द रूप परमेश्वर मंत्र के रूप में अवतार ले रहे हैं, इसलिए कि मैं उसका संग कर सकूं। और संग कहां? बाहर नहीं, अंदर। इसीलिए जब अंदर संग करोगे तो बाहर तो संसार से संबंध आपका बोलकर बनता है, अंदर का संबंध मौन होकर बनता है। आप किसी मंदिर में खड़े हो जाइए तो आपका मन करेगा मैं प्रभु से बात करूं, प्रभु की अपनी बात कहूं, क्योंकि प्रभु बाहर है आपके लिए। लेकिन यदि अंदर है, सिमरन अंदर करना है प्रभु का, तब फिर मौन तो होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ना वहां कोई आकार है, ना वहां कोई भाषा है, ना वहां कोई कर्म है, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो इसीलिए केवल आपका प्रभु के प्रति भाव है। किस रूप में? कि प्रभु ने मेरे लिए मंत्र रूप में अवतार किया है, अब मैं प्रभु का अंदर संग कर सकता हूं। तो मौन होकर जब प्रभु को याद करता हूं मैं मंत्र के रूप में, तो फिर वो आपका सही रूप में असली जाप बनता है। और वो काम क्या करता है कि वो जो जाप है वो मन के अंदर संस्कारों का निर्माण करता है। वो भक्ति के संस्कार हैं, प्रभु प्रेम के संस्कार हैं, प्रभु की याद के संस्कार हैं, प्रभु के महत्व के संस्कार हैं। तो सारे मन के अंदर, क्योंकि जिस चीज को भी मन धारण करता है भोग के रूप में या याद के रूप में, उसके संस्कार जो हैं मन के अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे फिर संकल्प उदय होते हैं। आप जानते हैं कि जब भी स्मरण करने बैठता हूं, मंत्र का संकल्प तो मेरा टूट जाता है और संसार के जो संकल्प हैं वो उदय हो जाते हैं उसके अंदर। कहां से उदय होते हैं? वो संस्कार बने हुए। किसी ने रसगुल्ला खाया, 10 बार खाया तो संस्कार बन गया ना, ऑटोमेटिकली उसकी याद आपके संस्कार के रूप में, संकल्प के रूप में वो उसकी याद आपके सामने आ जाएगी। नाम स्मरण करने बैठे हो, रसगुल्ले की इमेज आपके सामने आ जाएगी, रसगुल्ले के स्वाद का संकल्प आपके सामने आ जाएगा, कैसे बनाया जाता है उसका संकल्प आपके सामने आ जाएगा। तो जो कुछ भी आप ध्यान से कर्म करते हो उसका संस्कार मन के अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर वो संकल्प के रूप में उदय होता है। इसीलिए उन सबके मुकाबले में जब तक नाम का महत्व, ईश्वर का महत्व आपकी बुद्धि में नहीं बढ़ता, बुद्धि के निश्चय में नहीं आता, तो फिर बुद्धि उस संकल्प मन को कंट्रोल कैसे करेगी। उसी तरह स्वप्न की तरह से मन के अंदर संकल्प आएंगे और उन इमेजेस में आप फंस जाएंगे और मंत्र आपका छूट जाएगा। तो इसीलिए ये सारी जो अभी सुन रहे थे 5 नियम की बात, तो प्रभु ने, महाराज जी ने ये 5 नियम क्यों दिए? तो 5 नियम पालन करने वाले के अंदर ये बुद्धि इतनी ट्रेंड हो जाती है और उसके उसके अनुसार चलने पर मन के अंदर ऐसे संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप ईश्वर की प्रेम से याद करने में सफल हो जाते हैं और फिर उसका वो लाभ मिलता है। तो सत्स्वरूप का मतलब ये हुआ कि मैंने उस मंत्र को बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय पक्का करना है। ये प्रभु खुद है, ये इसके अलावा प्रभु कौन सा हो सकता है? उससे तो मेरा संबंध ही कोई नहीं है। सर्वव्यापक प्रभु है, सब कुछ संसार प्रभु ही है। तो यहां तो आपको दुश्मन नजर आ रहे हैं, मित्र नजर आ रहे हैं, कहां प्रभु आपको नजर आ रहा है? तो यदि प्रभु आपको नजर आएंगे तो अंदर ही नजर आएंगे। संबंध बनेगा तो अंदर ही उनसे संबंध बनेगा, याद करोगे तो अंदर ही उसको याद करो। तो इसीलिए ये राज है भक्ति का, ये राज है संसार के संस्कार काटने का, कि प्रभु की ये प्रेम से याद होती है। तो प्रभु का विज्ञान जब आपके सामने क्लियर होता है, महामंत्र का विज्ञान प्रकट हुआ ना, साथ में वाणी प्रकट हुई। जब महामंत्र आया, जिस महाराज जी के अंदर वो महामंत्र प्रकट हुआ प्रभु कृपा से, तो उसी देह के द्वारा प्रभु कृपा से वाणी भी तो प्रकट हुई। तो वाणी आपको कह रही ना, कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत्त्वयो, साफ तो निर्णय कर रही है। वो जो ज्ञान तत्व है, जो सर्वव्यापक सत्ता है, सर्वव्यापक ईश्वर है, पाए ज्ञान तत्व योग, तेरा उससे योग बन जाएगा, तेरा उससे जो है संबंध बन जाएगा, जुड़ जाएगा तू उससे। तो वो सर्वव्यापक जो ईश्वर है, ये आपको तब पता लगता है कि नाम प्रभु का अर्थात इस सिद्ध मंत्र का जाप करते करते आपके अंदर प्रभु का वो स्वरूप प्रकट होता है, जिसको महाजी कहते थे प्रेमी नाभि चक्र का खुलना। संसार के निश्चय जब तक बुद्धि में बने हुए हैं, संसार का शौक जब तक बुद्धि में बना हुआ है, तब तक ये काम अंदर होता नहीं। इसीलिए जिसने कामना को, वासना को मानव जन्म में जहर करके समझा, ठीक है आप उससे बंधे हुए, आपके संस्कार ऐसे हैं उसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते आपकी बुद्धि इस निश्चय को सीख जाती है कि वास्तव में संसार में है कुछ नहीं। वाणी जो निर्णय कर रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तक सी। तो सारा पाप सारी बेचैनी प्रभु का नाम ही हरण करे। दूसरा मनुष्य के लिए मुक्ति का रास्ता या इस बंधन से छूटने का रास्ता, इस दुख से छूटने का रास्ता है ही नहीं कोई। एकमात्र कोई रास्ता है वो अंदर का रास्ता है, वो प्रभु का भजन है, प्रभु का नाम स्मरण है और प्रभु का अनुभव है, प्रभु का दर्शन है। तो उसके लिए ये वाणी गाइड कर रही है कि सत स्वरूप को अंतर जा। तो इसका पहला ही सूत्र ये क्या कह रहा है कि सत स्वरूप का जब मैंने अंदर जाप करना है तो वो तो लिमिटेड होना चाहिए ना, अनलिमिटेड कैसे हो सकता है, सर्वव्यापक ईश्वर कैसे हो सकता है। तो सर्वव्यापक ईश्वर ही है वो, लेकिन सर्वव्यापक ईश्वर ने अवतार लिया है मेरे लिए। ये मेरा परम भाग्य है कि इस घोर कलयुग में भी मैं पैदा हुआ हूं, मेरा शरीर पैदा हुआ है। तो प्रभु ने मेरी व्यवस्था भी कर दी कि अंतर्यामी प्रभु को मैं याद कर सकता हूं प्रेम से। और क्योंकि मैंने वाणी पर विश्वास किया है, गुरु पर विश्वास किया है, इसीलिए यदि मैं उस महामंत्र को प्रभु जानकर प्रेम से याद करता हूं तो मेरे मन के अंदर वो प्रेम के संस्कार, प्रभु भक्ति के संस्कार इकट्ठे हो जाएंगे। और उन संस्कारों के कारण जो पुराने संस्कार हैं वो या तो डाइल्यूट हो जाएंगे या भस्म हो जाएंगे। जिसको महाजी कहते थे प्रेमी, जो नए संस्कार हैं ये ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं और पुराने संस्कार मिट जाते हैं या तली में चले जाते हैं, अच्छा नीचे दब जाते हैं। इस जन्म में फिर आपको परेशान नहीं करते। तो ये संस्कार निर्माण जप के द्वारा ही होते हैं। और जब भी किस भाव से, जिस भाव से वाणी याद दिला रही है, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया। और मंगल किस रूप में, कलह कलेश सब दूर होए। कलह कलेश क्या है, ये मन के संकल्प ही कलह कलेश है। तो कलह कलेश सब दूर होए, सारे पूरी तरह से संकल्प तेरे खत्म हो जाएंगे, मन तेरा निरसंकल्प हो जाएगा। अर्थात मन के अंदर संकल्प का उठना जब बंद हो जाता है तब आपका संबंध ही मन से टूट जाता है। तो साधना की वो स्थिति जहां मेरा मन से ही संबंध टूट गया है, तो महाजी कहते प्रेमी वही अवस्था है ईश्वर दर्शन की। तब तुझको पता लगता है कि ईश्वर का कितना अंदर आनंद है, कोई संकल्प ही नहीं उठ रहा है और इतना आनंद है। तो उस आनंद में इतना मस्त हो जाता है जैसे कि गहरी नींद में मस्त हो जाता है। गहरी नींद आती है तो अपने को याद रखता है क्या, संसार को याद रखता है क्या? जब जागता है तब पता लगता है कि मेरी सारी थकान मिट गई, सारा जो मेरा जो ब्रेन में लोड था दिन भर के काम का वो सारा गायब हो गया, तरोताजा हो गया। तो मन के ऊपर जब ये मैं अंदर ही जब पहुंचता हूं तो बुद्धि जब उसका अनुभव करती है उस आनंद का, तो इस बुद्धि की वो जो गहरी नींद वाली अवस्था है वो समाधि में बदल जाती है। तो उस समय ये आनंद का अनुभव कर रहा है, प्रभु का अनुभव कर रहा है और उस आनंद का भोग कर रहा है। तो वहां से जब ये वापस आता है तब देखता है कि संसार में वास्तव में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। वहां जाके निर्णय होता है, जो वाणी कह रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर। चित्त कहते हैं बुद्धि को, क्यों, क्योंकि चित्त का मतलब होता है चेतना। चेतना या जानने की शक्ति बुद्धि में है, मन में नहीं है। तो जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाएगा, जो प्रेम से सिमरन करेगा इस महामन का, उसका अपार मंगल होगा अर्थात अपार कल्याण होगा। अपार कल्याण का मतलब होता है मोक्ष, जो मन और इंद्रियों के बंधन से परमानेंट मुक्त हो जाता है। तो मन इंद्रियों से जो परमानेंट मुक्त होगा उसके लिए बचेगा क्या अंदर, केवल ईश्वर। अब बताइए कि इस जाप को अंदर करने के लिए करना क्या पड़ेगा। वो कह रहे हैं सत सिखिया को मन में थाप। पहले गांव वाले या शहर में भी डेरियां होती थी तो कंडे इसको बोलते हैं, गोबर के उपले बोलते हैं, वो औरतें जो है दीवार में थाप देती थी, दीवार में चिपका देती थी गोबर। तो ये मैंने सत सिख्या को मन में थापू कैसे। तो सत शिक्षा क्या है, यही महाजी ने जो पांच नियम दिए, सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण, ये आपकी दैनिक क्रिया है, दैनिक जीवन है आपका। तो इस ये सत शिक्षा है गुरु की। तो इस सत शिक्षा को मैं, इसलिए महाजी ने पांच चैप्टर लिखे संत अभिलाष में, सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण, और उसका कॉमन नाम क्या रखा, आत्मिक उन्नति के नियम। आत्मा की क्या उन्नति होगी, आत्मा तो उन्नति है। तो मेरी उन्नति होती है आत्मा तक पहुंचने के लिए। इसको आत्म उन्नति कहते हैं। तो ये आत्म उन्नति के नियम है, इसका मतलब क्या हुआ कि मन के अंदर जो मैंने संस्कार बनाने हैं वो इन पांच नियमों के अनुसार तैयार करने हैं। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हैं या सीखते हैं सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तो ये इसके अनुसार जब मैं जीवन बनाता हूं अपना, तो मेरे अंदर संस्कार बनते हैं नाम रूप गुण कर्म वाले, और जो मन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए जब मन आपका जो है वो सतोगुणी प्रभाव उसके अंदर आ जाता है, सतोगुणी संस्कार उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये है वो कह रहे हैं कि सत सिक्ख्या को मन में था। तो उस समय आप जब इसके आदि हो जाते हो या संस्कार ये इकट्ठे हो जाते हैं सतोगुणी संस्कार, तब आपके अंदर संकल्प भी फिर अच्छे उठते हैं, बुरे संकल्प नहीं उठते मन के अंदर। स्मरण करते वक्त भी संकल्प उठेंगे तो सेवा का संकल्प उठ जाएगा, आश्रम की सेवा करनी है मैंने, आश्रम का ये काम पेंडिंग है। तो देखिए कि संकल्प तो उठ रहा है, वो भी स्मरण में बाधक है। देखिए संकल्प कहाँ का उठ रहा है, सतोगुणी संकल्प उठ रहा, तो गुणों में परिवर्तन आया नहीं आया। तो तीसरी बात कह रहे हैं कि नित ही निर्मल ज्ञान विचार, नित ही निर्मल ज्ञान विचार। तो निर्मल ज्ञान क्या होता भी? मल रहित, निर्मल मतलब मल कहते हैं विकार को, और निर्मल माने विकार रहित। तो निर्मल ज्ञान कौन सा होगा? वो ज्ञान जो संसार के बंधन को काट दे। तो जितना भी सत्विचार है, आप इसका जैसे जैसे विज्ञान सीखेंगे, आपके बुद्धि के अंदर जो स्थूल विकार है, क्या है? बच्चे से प्रेम है, मकान से प्रेम है, वस्तुओं से प्रेम है, खाने पीने के पदार्थों से प्रेम है, उनकी याद आती है। तो निर्मल का मतलब हुआ कि वासना रहित, मल रहित मत है अध्यात्म, वासना रहित। तो ये जो जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक विद्या है, ये आपके जो वासना के विकार हैं, या वासना या यूं कहिए संसारी इच्छाओं के विकार हैं, ये धीरे धीरे इनके निश्चय को तोड़ती है। जितने भी संसारी शौक हैं, आप मान लिया एक शौक है कि मैंने अपने को दिखाना है, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा योगी हूं। क्या दिखाओगे आप? शरीर तो दिखाओगे आप, आपने इसका नाम रख रखा है, इसका रूप पता है आपको, तो इसे नाम रूप को ही तो दिखाओगे आप। और फिर विकार क्या इकट्ठा होगा? अहंकार इकट्ठा हो जाएगा, मोह आपका और गहरा हो जाएगा। तो जो आप दिखाकर खुश हो रहे हो वो विकार आपकी बुद्धि में इकट्ठे कर रहा है, अहंकार का विकार, मोह का विकार। तो अब बताइए, यदि आपने विचार किया अध्यात्म विद्या सीखकर, तो आप अलर्ट हो जाओगे नहीं हो जाओगे? मैंने किसी को क्या दिखाना? मैं यदि बाहर की शक्ल लोगों को दिखा रहा हूं तो अंदर ईश्वर को क्या दिखाऊंगा मैं? किस मुंह से उसके पास जाऊंगा मैं? क्या वो मेरी शक्ल देखेगा? आंख बंद करके अंतर्यामी प्रभु का मैं स्मरण कर रहा हूं और बाहर शक्ल दिखा रहा हूं। जो विचार आपके अंदर पैदा होगा तो ये कहां से आएगा? ये नित ही निर्मल ज्ञान विचार। तो ये जो वाणी का विचार है, शास्त्र का विचार है, ये निर्मल ज्ञान है जो सारी वासना के मल को साफ कर देता है, जब बुद्धि के अंदर निश्चय बदलता है। इसीलिए पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, एनालिसिस करते करते आपकी बुद्धि इतनी ट्रेन हो जाती है कि हर विकार का सही सही एनालिसिस करना, सही सही विवेचन करना सीख जाती है। फिर आपको जो गुण दिखाई पड़ता था उसमें दोष दिखाई पड़ने लगता। जब गुण में ही, संसारी गुण में ही दोष दिखाई पड़ेगा, तब आप उसे चिपकोगे नहीं, उसको त्याग करने की, छोड़ने की कोशिश करोगे। जिस प्रकार महाजी सादगी की जब बात कर रहे हैं, सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, वो कह रहे हैं कि जिसका जीवन सादा होता है उसका मन प्रसन्न रहता है। और क्या कह रहे हैं? मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। इस साधन को जो धारण करेगा वो अमूल्य निधि प्राप्त करेगा। वो अमूल्य निधि कौन सी है? प्रभु दर्शन, प्रभु का प्रेम। तो वो इतनी कीमती चीज तुझे इस देह के अंदर मिल जाएगी, तो क्या करेगा फैशन करके तू? तो इसीलिए ये सारा जो ज्ञान पे जब विचार करते हैं गहराई से, तब ये हमारी बुद्धि की आदत बन जाती है कि जो निर्णय वाणी दे रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर, ये बुद्धि में निश्चय पक्का हो जाता है। तब आपको पता लगता है कि सिमरन कितने प्रेम से हो रहा है, प्रभु की याद कितने प्रेम से हो रही है, और कैसे ये संस्कार सारे मन में मेरे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि प्रभु दाते के चरण पधार। तो प्रभु दाते के जो चरण है वो कौन से हैं? जो प्रभु सर्वव्यापक है तो कौन से चरण को आप उसके चरणों में पधारोगे? तो क्या है ये वास्तव में प्रभु शरणागति, कि प्रभु तू करता तू हरता सर्व ते किया, सारे जगत का मालिक तू है, इसका कर्ता तू है, तू मेरे शरीर की रक्षा कर रहा है, मुझको तो अपने प्रारब्ध का पता ही नहीं है। इस शरीर से वो सारे प्रारब्ध कर्म हो रहे हैं जो जन्म लेते ही निश्चित हो चुके हैं, और कृष्ण अर्जुन को यही तो सिखा रहे हैं। तो बताइए, गीता का मुख्य संदेश तो यही है, लेकिन सारा ज्ञान सुनने के बाद जब अर्जुन की समझ में आ गया, तब वो कह रहा है कि अब आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार, अर्थात समर्पण कर दिया। अर्थात इसका मतलब है प्रभु दाते के चरण पधार का मतलब प्रभु आज्ञा में जीना सीखना, ये है प्रभु के चरणों में पधारना। तो मैं ईश्वर हुक्म के अंदर जीना सीख जाता हूं, जो गुरु कह रहा है, जो वाणी कह रही है, जो शास्त्र कह रहे हैं, उसके अनुसार मेरी बुद्धि के निश्चय बदलते हैं। तो आप देखिए कि आपके धीरे धीरे ये ज्ञान सीखने से आपका की जो मन और बुद्धि है, ये दोनों ईश्वर परायण हो जाती है, ईश्वर का महत्व धीरे धीरे इनके अंदर बढ़ता रहता है। तब आप जो है प्रभु के चरणों में पधारते हो, और तब जाके उसके चरणों में आपका प्रेम बनता है, और ये मानव जीवन आपका सफल होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।